श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण श्लोक क्रमांक 11। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृधम सत्वमित्युतः। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस संबंध में श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो अभी तीन श्लोक की चर्चा होगी 11, 12 और 13, ये दिखाता है कि कौन सा गुण किस समय हमारे चित्त में प्रमुख है अपने गुणों के द्वारा। जब ज्ञान प्रकट होता है चतुर्गुण के प्रभाव से, तो उसका स्वभाव है कि इंद्रिय भोग के विषयों को सच्चा स्वरूप जो है वो हमको समझ में आता है, जैसे कि शब्द इत्यादि का हम समझ पाते हैं और ये समझते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, जैसे कि कान। तो यहां जो शब्द आ रहा है, सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, अर्थात सभी ज्ञान इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रिय विषयों को के सच्चे स्वरूप को समझ पाने की शक्ति। तो इसे समझ लेना चाहिए कि चित्त में सत्व की स्थिति हो रही है। जैसे हमने सुना था कि राग में या रजोगुण में व्यक्ति स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, वस्तुतः स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर आकर्षक नहीं है, लेकिन जब हम रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो उस प्रकार के उस इंद्रिय भोग के विषय जो उसका रूप है, उस रूप के सच्चे स्वरूप को हम नहीं समझ पाते। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो समझ पाएगा कि इसमें आकर्षित होने के लिए कोई वस्तु नहीं है और ये केवल माया के द्वारा एक प्रलोभन मात्र है। तो इस प्रकार से वही आंखें हैं, लेकिन ज्ञान के कारण, जो ज्ञान उत्पन्न होता है सतोगुण के कारण, व्यक्ति इस भोग से निवृत्त हो जाता है। यहां पर एक शब्द है अंत में उता। उता का मतलब होता है भी, अर्थात कि जब सत्व बढ़ेगा तो फिर उसके साथ शांति भी बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारे चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होगी तो शांति भी बढ़ेगी, यानी कि इंद्रियों की चंचलता कम होगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो व्यक्ति को ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जिससे उसके जीवन में सत्वगुण की वृद्धि हो। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। हमारे लिए इस चीज को समझना मुश्किल है क्योंकि प्रायः हम सब लोग सत्वगुण में स्थित नहीं है, अपितु रजगुण और तमोगुण से प्रभावित है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग धीरे धीरे इस स्थिति को प्राप्त करेंगे और आगे प्रगति कर सकते हैं। लेकिन पहला उद्देश्य यही है कि अपने इंद्रियों को हम संयमित करें और इंद्रियों को भगवत संबंधी कार्य में लगाकर शुद्ध करने का प्रयास करें, जिसके द्वारा सत्वगुण की वृद्धि कम से कम हो हमारे जीवन में। और यहां पे लिखा है ज्ञानम यदा तदा विद्याद विवृधम सत्वमित्युतः, यानी कि जब ज्ञान की वृद्धि होती है सत्वगुण का संग करने से तब विद्या की वृद्धि भी होती है। तो ज्ञान और विद्या की समझ लेना चाहिए कि हम लोग इस प्रकार से बढ़ते हैं। अब एक्चुअली विद्या का अर्थ यहां पर यह है कि समझ लेना चाहिए कि तुम जानो, तुम समझ लेना चाहिए कि सत्व बढ़ रहा है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति बहुत भोगों के पीछे लालायित नहीं है, भोगों के पीछे भाग नहीं रहा है, तो समझना चाहिए कि उसके जीवन में सत्वगुण की वृद्धि हुई है। टेक्स्ट नंबर 12। लोभो लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। अनुवाद, हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि लोभ का अर्थ है जो वस्तुएं किसी के पास हैं उसको त्याग ना पाने की शक्ति। ये अशक्यता कि जो अपने वस्तुएं हैं उसको हम त्याग ना पाएं, जिनको हम अपना मानते बैठे, तो ये अशक्यता ही लोभ कहलाती है। प्रवृत्ति का अर्थ है कि अपने पास जो वस्तुएं हैं उनको और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करना। प्रवृत्ति का मतलब है और अधिक अधिक उद्यम करना, प्रयास करना, ताकि और अधिक वस्तुएं हमारे पास इकट्ठी हों। कर्मणाम आरंभ का अर्थ है ऐसी क्रियाओं में लगना, जैसे यथा घर बनाना और बहुत बहुत वस्तुएं बांधना, अपने लिए भोग की सामग्री को जुटाना। ध्यान देना होगा कि प्रवृत्ति का मतलब है ऐसी ऐसा इंक्लिनेशन या ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति जिसके द्वारा अधिक काम करने की प्रवृत्ति, और कर्मणाम आरंभ का मतलब है उन कर्मों में नियोजित होना। प्रवृत्ति का अर्थ है उनमें लगने का भाव, उनके प्रति झुकाव, ऐसे कर्मों के प्रति झुकाव। और कर्मणाम आरंभ का मतलब ही है कि घर वर इत्यादि बनाना, उन कर्मों में लगना ही कर्मणाम आरंभ है। अशमः का अर्थ है इंद्रियों में अशक्यता होना अपने इंद्रिय विषयों को त्यागने में, यानी कि इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों को त्याग नहीं पाती हैं, लोग भोग त्याग नहीं पाते हैं, तो यह भी अशमः कहलाता है। और स्पृहा का मतलब है भोग की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति के विषयों की स्पृहा करना, इच्छा करना। तो इन सब ये सब जब गुण हमारे चित्त में बढ़ रहे हों तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम रजगुण से प्रभावित हो रहे हैं। जब हम किसी वस्तु से बीमार हैं, इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के जो चिन्ह हैं वो समझ में आता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा डायग्नोसिस इस प्रकार का हो ताकि हम अपनी बीमारी को समझ करके और उसके अनुरूप हम कार्य कर सकें, उसके अनुरूप हम अपना इलाज ले सकें। इस संबंध में छोटी सी घटना आती है कि एक ब्राह्मण थे और वो राजा कृष्णदेव राय नाम के राजा के राज्य में रहते थे। तो उनके उनसे राजा ने देखा कि वो बहुत गरीब हैं, तो उनको बोला कि क्या आप कुछ मुझसे दान स्वीकार करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे दान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे घर में, घर के आंगन में एक इमली का पेड़ है और मेरे शिष्य मेरे लिए चावल लेके आते हैं, तो मेरी पत्नी चावल बनाती हैं और इमली के पत्तों की चटनी या सब्जी बना देती हैं और उसको रोज मैं खा करके संतुष्ट रहता हूँ। तब देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण पूरी तरह से अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में, जो भी सुख सुविधा थी भगवान की कृपा से जितना भी मिला था, गरीबी क्यों ना हो, उसमें वो संतुष्ट थे। तो ये सतगुण का लक्षण है। क्यों? क्योंकि जितना संग्रह हम करते हैं उतना अधिक हमारी चेतना उन चीज़ों में बढ़ जाती है। वो चीज़ें हमें सूक्ष्म रूप से बोलती रहती हैं कि मेरा उपयोग कीजिए, मेरा उपयोग कीजिए, और हमारी चेतना आध्यात्मिक विषयों से हट जाती है। तो इसीलिए पहले के ब्राह्मण जानबूझ करके अपने को गरीब रखा करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तात्पर्य, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। इसको हमने देख लिया था, ये लोभ है। यदि इसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह इस महल में सदा रहेगा। कितनी सुंदर बात श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम कुछ समय के लिए ही जगत में आने वाले हैं। सब आते हैं, मेहमान की तरह आते हैं, मेहमान की तरह चले जाते हैं, और उसमें व्यक्ति सोचता है कि बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, ये नहीं सोचता कि कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर वह उसे दूसरे स्थान में जाना पड़ेगा जहां के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास नहीं करता बहुत बड़ा मकान बनाने के, अपितु जैसे भगवान के आयोजन से व्यक्ति को मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। तो आप देख सकते हैं सतोगुण में व्यक्ति इंद्रिय भोग के विषयों के स्वरूप को समझता है, इसलिए उसमें लालसा को विकसित नहीं करता, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति जो है वह समझ नहीं पाता इस बात को और उसके लिए लालसा विकसित करता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है, वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजगुण की विशेषता मानना चाहिए। तो ये समझ लेना चाहिए कि सारे कार्य जो हैं वो रजगुण के हैं, और अगर हमारे चित्त में इस प्रकार से भावना है तो हम बड़े खतरे में हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए
ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को सतोगुण का संग करना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ सतोगुण का संग करना चाहिए, अर्थात सुबह उठना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और पहले इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध करके सतगुण में स्थित करने का प्रयास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे शुद्ध सत्व में आने का प्रयास करना चाहिए। 13वां, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदना। जब तमगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो इस संबंध में श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि अप्रकाश का अर्थ है ज्ञान का भाव, जिसके द्वारा व्यक्ति उन चीजों को भोगने का प्रयास करता है जिसका शास्त्र में विरोध किया गया है, निषेध किया गया है, और जो शास्त्र में बताया गया है जिन शास्त्रों को, किन क्रियाओं को करने से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, उसको ना करने की प्रवृत्ति। यहां पे जो शब्द है अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति का अर्थ है कि जो शास्त्रों में वर्णन है उसको करना नहीं चाहता है। और प्रमाद का अर्थ है चेतना शून्यता, अर्थात ये भी यही ध्यान देना कि उसके हाथ में क्या है। ये बड़ा स्पष्ट, जब हम सो जाते हैं तो हम पूरी तरह से चेतने से युक्त रहित हो जाते हैं कि आसपास हमारे क्या हो रहा है और हम समझ नहीं पाते। और मोह का अर्थ है जो मिथ्या जीवन है उसमें पूरी तरह से अभिनिविष्ट रहना। तो इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति समझ लेना चाहिए कि वह तमगुण से प्रभावित है। तात्पर्य, जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, ये आप देख सकते हो, ये शब्द है अप्रवृत्तिश्च। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। तो यानी अपने केवल शरीर में अभिनिविष्ट होकर के व्यक्ति केवल कुछ कार्य करना नहीं चाहता है, कुछ परिश्रम नहीं करना चाहता। वह रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी नहीं है जो भोगों के लिए प्रयास करना चाहता है, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई नियम पालन नहीं करना चाहते हैं। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। तो ये बड़े खतरनाक है और इससे नितांत रूप से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रजोगुण तमोगुण सत्य कलियुग में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा व्याप्त है, और ऐसे लोगों का संग जो इनमें बहुत आसक्त हैं ये हमको भी इस प्रकार के संग से बांध देगा, तो बचना चाहिए। अब कौन व्यक्ति किस गुण में मरता है और उसको क्या प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा हम अगले दो श्लोकों में करेंगे। हरे कृष्णा।